मोक्षमार्गस्यनेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में जो दशम सूत्र है, जीव का वर्णन है, तो दशम सूत्र में संसारी और मुक्त के भेद से जीव दो प्रकार के बताए हैं, और संसारी जीव संसार को प्राप्त है इसलिए संसारी है। संसार पांच प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो संसार को परिवर्तन कहते हैं, संसरणं संसार परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण अर्थात परिवर्तन करना संसार है। तो द्रव्य परिवर्तन का विवरण पूर्ण हुआ, अब क्षेत्र परिवर्तन उच्यते, क्षेत्र परिवर्तन कहा जाता है। सूक्ष्म निगोद जीवो पर्याप्तक, कोई सूक्ष्म निगोद जीव है अपर्याप्तक है। सर्व जगन्य प्रदेश शरीरो, वो इतना छोटा है कि उससे छोटा कोई जीव नहीं हो सकता। सर्व जगन्य आकाश प्रदेशों में उसका शरीर समा रहा है। लेकिन वो अपर्याप्तक है, ये बात ध्यान में रखना है, जो कि इससे पूर्व में विशेषण दिया गया है। लोकस्याष्ट मध्य प्रदेशान स्वशरीर मध्य प्रदेशान कृत्वा उत्पन्न, लोक के बीच के जो आठ प्रदेश हैं, सुमेरु पर्वत के मध्य में पूरे लोक के मध्य भाग वाले आठ प्रदेश आते हैं, उनको रुचक प्रदेश कहते हैं। उनकी आकृति गोस्तनाकार है, यानी वैसे कोई अंतर नहीं है, पर ये एक प्रदेश, दो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, ऐसे आठ प्रदेश हैं। तो ये गोस्तनाकार है, गाय के थन के समान आकार है। तो ऐसे आठ प्रदेशों पर वो सर्व जगन्य अवगाहना वाला सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोधिया जीव अपने शरीर के मध्य प्रदेशों को स्थापित कर लेता है। अर्थात ये संयोग की बात है, उस तरीके से उसका जन्म होता है, वहां पर वो उत्पन्न हो जाता है। तो जहां लोक के आठ मध्य प्रदेश हैं, वहीं पर जीव के भी आठ मध्य प्रदेश हो जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो एक निगोद शरीर में अनंत जीव होते हैं, पर यहां तो शरीर बनता ही नहीं है, अपर्याप्तक अवस्था है ना। और लब्धि अपर्याप्तक होने के कारण शरीर बनेगा भी नहीं, उसके पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक श्वास में 8-10 बार, जो 18 बार एक श्वास में जिसका मरण होता है, उस जीव की बात चल रही है। तो खैर, वो वहां जाकर के अपने आत्म प्रदेशों में, जो बीच में अपने आत्मा में भी, अपनी आत्मा में भी एक वैसा ही एक मध्य स्थान है जिसको रुचक प्रदेश कहते हैं, वो भी वैसे ही है, बिल्कुल लोक के जो आठ प्रदेश है वैसे ही अपनी आत्मा के भी आठ प्रदेश है। और सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में नाभि स्थान के अंदर आत्मा के वो प्रदेश पाए जाते हैं। तो उन प्रदेशों को लोक के मध्य प्रदेशों में मैच करके, कह लो अंग्रेजी में, वहीं सेट करके, वहीं स्थापित करके उत्पन्न जन्म लेता है। और क्षुद्र भव ग्रहणं जीवित्वा, क्षुद्र भव प्रमाण काल तक जीवित रहकर एक मुहूर्त में 3773 3773 श्वासोच्छ्वास होते हैं। और ये श्वासोच्छ्वास ये वाले सांस नहीं है, ये वाले सांस है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में तो एक मिनट में 12 से 18 तक की गिनती आती है, तो फिर उसको आप 48 से गिनती का गुना करोगे तो 18 को 48 से गुना करने पर कितने आते हैं, उतने आ जाएंगे, 18 × 48। एट सिक्स फोर आते हैं। लेकिन ये जो श्वासोच्छ्वास है ये ऑक्सीजन पहुंचाने वाली गति के श्वासोच्छ्वास है, तो यहाँ जो अपन देखते हैं तो ये 1 मिनट में 78 के आसपास इसकी गिनती रहती है, योग और व्यायाम करने वालों की गति कम होती है और नहीं करने वालों की अधिक होती है। तो इसकी गिनती से अगर देखें तो 3773, 3773 श्वासोच्छ्वास एक मुहूर्त में होते हैं। तो उसमें से एक श्वासोच्छ्वास में जो काल लगता है वो 48 मिनट्स में कितना लगता है वो अपन निकाल सकते हैं। 48 मिनट्स में कितने सेकंड्स हैं और उनसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने श्वासोच्छ्वास में कितना टाइम लगेगा, एक श्वासोच्छ्वास का काल कितना होगा वो निकाल सकते हैं। उतने काल में जो 18 बार जन्म मरण को प्राप्त करने वाला जीव है वो लब्धि और अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव है, यानी उसका लाइफ स्पैन, उसके जीवन की अवधि उतनी अल्प होती है। तो क्षुद्र भवन ग्रहणम जीवित्वा मृता, वो उतना जीवित रह करके मर जाता है। सैव पुनस्तेने वावगाहनी निदुरुत्पन्नस, वो उसी आकार के साथ उसी अवगाहना के साथ दोबारा उत्पन्न होता है। तथा स्त्रिस, उसी तरह तीसरी बार उत्पन्न होता है। तथा चतुर, फिर 4 बार उत्पन्न होता है। इत्येवम, इस प्रकार से कितनी बार उत्पन्न होता है, यावत् घनांगुलस्य असंख्य भाग प्रमिताकाश प्रदेशास तावत् कृत्वस् तत्रैव जनित्वा, घनांगुल के असंख्यातवे भाग में जितने आकाश के प्रदेश होते हैं वो भी असंख्यात होते हैं, तो असंख्यात बार वो जन्म मरण को प्राप्त होता है उसी जगह उतने ही आकार में। संभव है बीच में कर्म का बंध अलग प्रकार का हो जाए तो आकार बड़ा मिल जाए या फिर जगह थोड़ी बदल जाए, पर वो जब बार बार वहां पर उत्पन्न होकर के असंख्यात भव पूरे करेगा तब वो उसका वहां का हिसाब, वहां का गणित पूरा होगा। या मतलब ये हुआ कि उस लोक के मध्य भाग में उसको जितनी अवगाहना, जघन्य अवगाहना थी उसमें जितने प्रदेश थे, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण थे प्रदेश, तो वो भी असंख्यात थे, तो असंख्यात बार उसको वहां पर जन्म और मरण को प्राप्त होना होगा, फिर ये भव पर ये क्षेत्र परिवर्तन और आगे बढ़ेगा। पुनः उसके बाद एकैक प्रदेशादिक भावेन सर्वोलोक आत्मनो जन्म क्षेत्र भावम उपनीतो भवति यावत् तावत् क्षेत्र परिवर्तनम्, फिर वो एक प्रदेश अधिक आकार वाला हो जाएगा, फिर एक प्रदेश अधिक आकार वाला, इस प्रकार अपने एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए, बीच में कई बार अनेक प्रदेश भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जब एक प्रदेश और बढ़ेगा पीछे उस गिनती वाले में से तब उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और इस प्रकार एक एक प्रदेश बड़ा बड़ा करके वो जीव के द्वारा प्राप्त करने योग्य सब प्रकार के आकारों को, अवगाहनाओं को जब पूरा करता है और संपूर्ण लोक में वो जन्म धारण कर लेता है तब उसका क्षेत्र परिवर्तन होता है, उसका आकार बढ़ता है, वो स्वक्षेत्र परिवर्तन है। और लोक के प्रत्येक स्थान में वो जन्म मरण को प्राप्त होता है, वो परक क्षेत्र है क्योंकि वो आकाश का हिस्सा है, और अपने प्रदेशों में वृद्धि होना अपना क्षेत्र है, तो अपने प्रदेशों में भी एक एक करके बढ़ाता जा रहा है और आकाश के प्रदेशों में भी सर्वत्र लोक के जितने प्रदेश हैं वहां वहां जा जा करके जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। ये परिवर्तन है, माने जीव इस तरह से अपने शरीर बदलता रहता है, बदलता रहता है और भटकता रहता है संसार में। तो इस तरह जब वो इतने विशाल लोक के 343 राजू प्रमाण ये पूरा लोक है, इसमें सर्वत्र वो जब जन्म मरण को प्राप्त हो जाता है तब एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होता है। और इस क्षेत्र परिवर्तन में चूंकि आचार्य कह रहे हैं कि क्रम से उसके एक एक प्रदेश बढ़ते जाएं, वो वाले भव को ही गिनना है, बीच में अगर और भव हो गए जहां पर उसके प्रदेश अक्रम से वृद्धि को प्राप्त हुए हों या फिर वृद्धि को प्राप्त होने के बाद फिर घट भी गए हों, तो उन भवों को नहीं गिनना है, उस काल को गिनना है। ये थोड़ा ध्यान से सुनने योग्य बात है। क्षेत्र परिवर्तन का मतलब ये होता है, क्षेत्र का अर्थ होता है जगह, स्थान। तो स्थान दो प्रकार के हैं, एक बाह्य क्षेत्र और एक अपना क्षेत्र, अपने द्रव्य का जितना क्षेत्र निजी क्षेत्र है वो क्षेत्र, उसने जो आकाश में जगह प्राप्त की है वो वाला क्षेत्र नहीं, उस द्रव्य के जो निजी प्रदेश हैं, जैसे जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश आकाश में कहीं भी रहे, मतलब अपन यहां बैठ जाए वहां बैठ जाए कहीं भी बैठ जाए, लेकिन अपने असंख्यात प्रदेश अपने साथ ही रहेंगे, तो वो अपने अपना क्षेत्र कहलाता है, वो अपना क्षेत्र कहलाता है। तो उसमें जगन्य अवगाहना के साथ फिर एक एक प्रदेश वृद्धि, सबसे पहले सर्व जगन्य जो अवगाहना थी उसमें असंख्यात प्रदेश थे, तो असंख्यात बार उस सर्व जगन्य अवगाहना के साथ जन्म लेकर मरण को प्राप्त हो गया, भले बीच में कम ज्यादा चलता रहा, वो टाइम तो ऐड होता रहा, लेकिन जब असंख्यात भव उसी अवगाहना के साथ पूर्ण होंगे जितने वहां प्रदेश हैं, तब वो जगन्य वाला हिसाब पूरा हुआ, फिर एक प्रदेश अधिक, फिर दो प्रदेश अधिक, फिर तीन प्रदेश अधिक, बीच में 10 प्रदेश अधिक हो गए, तो वो इसमें गिनती में नहीं आएगा। ऐसे बढ़ाते 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 जो सर्वोत्कृष्ट अवगाहना है महामत्स्य की, स्वयंभू रमण समुद्र में जो सम्मूर्छन महामत्स्य, जिसको महामत्स्य को राघव मत्स्य भी कहते हैं, 1000 योजन उसकी लंबाई है, उतना बड़ा शरीर जब तक प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक एक एक प्रदेश कम से कम धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और कितने जन्म लग जाएंगे, अनंत जन्म लग जाएंगे, क्योंकि पुद्गल परिवर्तन में जितना हिसाब था उससे भी अधिक इसमें है क्षेत्र परिवर्तन। और फिर उसको, ये तो ठीक है, ये तो स्वक्षेत्र परिवर्तन में सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त निगोदिया की अवगाहना से लेकर बढ़ाते 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 वहां तक चला गया महामत्स्य तक। लेकिन परक्षेत्र परिवर्तन में ऐसा चलता है कि सुमेरु पर्वत के मध्य में उत्पन्न हुआ, मरण को प्राप्त हुआ, फिर उसके आजू बाजू करते करते सारे लोक में जितना स्थान है, 343 राजू प्रमाण, उसमें एक एक स्थान पर जब वो जन्म और मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तब वो पूरा क्षेत्र परिवर्तन होता है। उक्तम च, कहा भी गया है, सवंग लोय खेते कमसुतं नत्थिजं न उपन्नम ओगाहणेन बहुसु परिभमिदो खेत संसारे। संपूर्ण लोक के क्षेत्र में क्रमश वो स्थान नहीं है जहां जीव ने जन्म धारण न किया हो, और विभिन्न प्रकार की अवगाहनाओं के साथ बहुत बार ये क्षेत्र परिवर्तन रूप संसार में भटक चुका है। यानी एक क्षेत्र परिवर्तन सुनते हैं तो फिर लगता है कि कितने जन्म होते होंगे। तो ऐसा ये कई बार कर चुका है, बहुसो ये शब्द लिखा है ना बहुशः, शस प्रत्यय जो होता है वो बार का वाचक होता है, एक शह एक बार, बहुशः बहुत बार, क्रमशः क्रमवार। तो ये बहुत बार ऐसा कर चुका है परिभ्रमितो केत्य संसार, क्षेत्र संसार में ये बहुत बार भटक चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस जीव ने पुद्गल परिवर्तन तो असंख्यात किए ही हैं, पर ये क्षेत्र परिवर्तन भी बहुत बार किए हैं। अब काल परिवर्तन उच्यते, काल परिवर्तन कहा जाता है उत्सर्पिण्याः प्रथम समये, उत्सर्पिणी के पहले समय में जाता जन्मा कोई जीव, कश्चित जीव स्वायुष्य परिसमाप्त हो मृत, अपनी आयु के समाप्त होने पर मृत मर गया। सैव पुनर्द्वितीयाया उत्सर्पिण्याः द्वितीय समये जात स्वायुष्य क्षयान्मृत, सैव पुनस्तृतीयाया उत्सर्पिण्यास तृतीय समये जात एवमनेन क्रमेण उत्सर्पिणी परिसमाप्ता तथा अवसर्पिणी च। अभी काल परिवर्तन की बात है तो काल के हिसाब से संसार में जीव के भटकन को माप रहे हैं। पहले किसी एक अवसर्पिणी के पहले समय में जन्म लेने वाला कोई जीव है, प्रथम समय में उसका जन्म हुआ, फिर किसी अन्य उत्सर्पिणी में आगामी काल में दूसरे समय में जन्म हुआ, फिर किसी उत्सर्पिणी में तीसरे समय में, एक एक उत्सर्पिणी में कम से कम 20 कोड़ा कोड़ी सागर का फर्क है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर बाद वापस वो दूसरी वैसी उत्सर्पिणी आएगी, तो उतने समय बाद वो जन्म लेता है। तो एक एक समय बाद 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 में जन्म लेते लेते क्रम से जब वो उत्सर्पिणी के प्रत्येक समय में जन्म ले चुकता है, तब उत्सर्पिणी संबंधी जन्म परिवर्तन पूरा होता है। एवं जन्म नैरंतर्य मुक्तम, इसी प्रकार अवसर्पिणी में भी करना है। अवसर्पिणी के प्रथम समय में, द्वितीय समय में, तीसरे में, ऐसे क्रम से वो एक एक समय में उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। मरणस्यापि नैरंतर्यम तथैव ग्राह्यम, इसी तरह मरण का की भी निरंतरता ग्रहण करनी है। यानी उत्सर्पिणी के प्रथम समय में मरा, द्वितीय में मरा, ऐसे करके क्रम से उत्सर्पिणी के सभी समयों में जब ये जीव मर लेता है, जन्म भी ले लेता है, मरण को भी प्राप्त कर लेता है, तब ये चार विभाग बनते हैं। उत्सर्पिणी संबंधी जन्म, अवसर्पिणी संबंधी जन्म, उत्सर्पिणी संबंधी मरण और अवसर्पिणी संबंधी मरण। तो ये जब पूरा हो जाता है जन्म मरण का चक्कर, एतावत काल परिवर्तनम, ये सारा मिला करके काल परिवर्तन कहलाता है। कितना भारी काल हो गई, यानी इसमें क्या है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले तो एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर कितनी बड़ी बात है, एक चौथे काल में, जबकि 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर होती है चौथे काल की अवधि, पांचवे काल की 21,000 और छठे की 21,000, तो ये 42,000 कम कर लिए और एक कोड़ा कोड़ी सागर में इतना कम करके बाकी पूरा चौथे काल का प्रमाण है। तो उतने चौथे काल में ही एक जीव असंख्यात भव धारण कर सकता है, जैसे महावीर स्वामी के जीव ने किया था। मारीच की पर्याय में उन्होंने जिनेंद्र भगवान को नहीं माना और अपने नए नए मत निकाले, 363 मत के उत्पादक बने और असंख्यात भव धारण करके फिर अंतिम तीर्थंकर बने। तो ये काल परिवर्तन है। इसके लिए उक्तम च कहा है एक गाथा में, उवसप्पिणी अवसप्पिणी समयावलियासु निरवशेषासु जादु मुदोय बहुसु भ्रमणेन दुःकाल संसारे। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रत्येक समय, इन दोनों की प्रत्येक आवलियों में यह जीव बहुत बार जन्म और मरण ले कर चुका है, काल संसार में भ्रमण पूर्वक इसने बहुत बार जन्म और मरण को प्राप्त किया है। बहुसो, यहां पर भी बहुसो शब्द है। अच्छा, ही अनंत खुद तो, अनंत खुद तो उसमें लिखा है, पुद्गल परिवर्तन संसार में अनंत जन्म लिए हैं। यहां पर बहुत बार इसने जन्म मरण को प्राप्त किया और भ्रमण किया है। होते तो अनंत, ये उससे भी ज्यादा होते हैं, पुद्गल परिवर्तन से बड़े बड़े होते हैं ये परिवर्तन। अब भव परिवर्तन उच्चते, भव परिवर्तन कहा जाता है। नरक गतौ सर्वजगन्यमायो, नरक गति की सबसे जगन्यायु 10 वर्ष सहस्राणि, 10,000 वर्ष। 3 आयुषा तत्र उत्पन्न, उस आयु के साथ कोई जीव वहां पर उत्पन्न होता है, असैनी जीव उत्पन्न होता है। 10,000 वर्ष की आयु असैनी जीव को प्राप्त होती है, उत्पन्न होता है। पुनः परिभ्रमित नहीं आयुषा तत्र ही जाता है, फिर संसार में भटक कर उसी आयु के साथ वहां उत्पन्न होता है। एवं 10 वर्ष सहस्राणाम यावंत समयास तावत कृत्वस तत्रैव जातः मृतः। तो 10,000 साल में जितने समय होते हैं एक पलक झपकने तो में तो असंख्यात समय जाते। आवली असंख्य समय संख्य जावलियास हो उच्छासो सत्तुस्सा थो सत्तो वा लवो भणियो। ये बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, ये पलक झपकना तो बहुत बड़ा काल है। और 10,000 वर्ष में कितना काल होता हो, कितने समय होते होंगे, उतनी बार वो 10,000 की आयु में जन्म लेगा कोई जीव। और फिर एक एक समय बढ़ाकर पुनरेक एक समय अधिक भावेन वो पर्याय प्राप्त करेगा। 33 सागरोपमानि परिसमापितानि, और वो जीव 33 सागर तक एक एक समय बढ़ाते हुए उत्पन्न होगा नरकों में। तो 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक एक एक समय बढ़ाते हुए उत्पन्न होने में कितने कितने भव लगेंगे, और वो भी क्रम से बढ़ेंगे तब उसको उसमें शामिल करेंगे। अगर बीच में कम ज्यादा आयु हो गई, मान लो 2 समय अधिक बढ़ गया, तो फिर वो भव गिना नहीं जाएगा इसमें, भव परिवर्तन में टाइम गिना जाएगा। ऐसे करते करते पूरा भाव परिवर्तन नरक संबंधी समाप्त करता है। ततः प्रच्युत्य, फिर वहां से नरकों से छूट करके तिरेक गतौ, तिरिंच गति में अंतर मुहूर्त आयु समुत्पन्न, अंतर मुहूर्त आयु लेकर के समुत्पन्न होता है। पूर्वोक्ति नैव क्रमेण त्रीणि पल्योपमानि तेन परिसमापितानि, फिर पूर्व क्रम से वो अंतर मुहूर्त आयु में उत्पन्न हुआ। तो अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं ना, उतनी बार वो उत्पन्न हो उतनी ही जगन्य आयु के साथ। और फिर एक एक समय आयु बढ़, वहां पर एक एक प्रदेश बढ़ाना था क्षेत्र परिवर्तन में, और यहां पर आयु बढ़ानी है। और एक एक समय आयु बढ़ाते चले जाना है, कहां तक के, 3 पल्ल्य तक के। यानी अब 3 पल्ल्य भोग भूमि में जाने के लिए पात्रदान की अनुमोदना अनिवार्य है। कुपात्रदान की करोगे तो फिर कुभोग भूमि मिलेगी। तो इतनी बार वो पात्रदान की अनुमोदना करता है, कई बार स्वयं दान देता है, और फिर वहां उत्पन्न होता है। फिर एक एक समय बढ़ाते हुए उत्पन्न हुआ। 3 पल्ल्य भी असंख्यात समय का काल है। तो इतना लंबा काल वो एक एक समय बढ़ाते हुए अपनी आयु को 3 पल्ले तक ले जाता है। एवं मनुष्य गतौ च तिरिंच, बिल्कुल इसी प्रकार मनुष्य गति में भी तिरिंच के समान ही क्रम चलेगा। जगन्याय अंतर मुहूर्त है, उसमें अंतर मुहूर्त के जितने समय होते हैं उतनी बार उत्पन्न होगा। फिर एक एक समय आयु को बढ़ाते हुए मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होता चला जाएगा, और ऐसा करते करते तीन पल्ले तक की जो उत्कृष्ट आयु है मनुष्य की वहां तक जाएगा। कर्म भूमि की एक पूर्व कोटि है, फिर उसके ऊपर की आयु भोग भूमि की है, तो उसमें इतनी बार उत्पन्न होगा। और बीच में आयु अगर कम ज्यादा हो गई तो वो उसमें वृद्धि का कारण नहीं मानी जाएगी भव परिवर्तन में, वो तो वहीं स्थिर रहेगा कांटा उसका। और जब एक समय बढ़ेगी आयु तो फिर ये कांटा खिसकेगा। ऐसा करते करते एक एक समय बढ़ाते हुए तीन पल्ले तक के मनुष्य आयु को प्राप्त होता है। कितने भव होते हैं कोई हिसाब ही नहीं है। प्रत्येक जीव के लिए अलग कैसे रहेगा? बिल्कुल यही क्रम है, सबसे पहले नरक, फिर तेरेंच, फिर मनुष्य, फिर देव, और जगन्य से उत्कृष्ट। क्या अच्छा, हाँ उसमें अंतर पड़ सकता है। नहीं, यहाँ पर तो एक ही जीव की अपेक्षा कहा जा रहा है, एक जीव की अपेक्षा से कथन है, क्योंकि संसार उस जीव का संसार है। वैसे देखा जाए तो बहुत अंतर नहीं पड़ सकता, क्योंकि आप कल्पना करिए ना कि एक समय बढ़ाने के लिए और एक एक समय बढ़ाने के लिए कर्मों की सेटिंग कैसे होगी। तो सारे जीवों के साथ वो स्थिति बन रही है, जो भी भव परिवर्तन करेगा उसको एक एक समय बढ़ाते हुए उतनी बड़ी भारी आयु को बनाना है, तो उसमें सबको एक जैसे ही समय लग जाएगा। वो कब तक मेंटेन कर सकता है? सोचो ना, बैडमिंटन खेलते हैं, टुक टुक टुक, ये खेलते हैं टेबल टेनिस, तो कितनी देर तक मेंटेन होता है? एक समय तक होता है, फिर वो नीचे चला जाता है। तो वो सबकी यही हालत होना है, यहां पर यही स्थिति है। देवगतौ नरकवत, देवगति में बिल्कुल नरक के समान ही स्थिति है, क्योंकि जगन्यायु वहां पर भी 10,000 है। भवनवासी और वेंतरों की जगन्यायु 10,000 वर्ष होती है, ज्योतिषकों की नहीं होती है। तदष्ट भागो परा, ज्योतिषकों की जगन्यायु एक पल्ल का आठवां भाग होती है। तद अष्ट भागो परा, अंतिम सूत्र है ना इसमें, चौथे अध्याय में, चौथे में कि तीसरे में, नहीं अंतिम सूत्र भी नहीं है। लोकांत का नाम अष्टौ सागरों प्रमाणी सर्वेशम, ये अंतिम सूत्र है। चौथे अध्याय में आयन तो विशेष है, लेकिन इसमें इतना ये फर्क है देवगति और नरक गति में। फर्क क्या है कि देव नरक गति में 33 सागर तक जा सकता है एक एक समय बढ़ाते हुए, देवगति में नहीं जा सकता। देवगति में कहां तक जा सकते हैं? 31 सागर तक जा सकता है, क्योंकि बिना मिथ्यात्व के ये परिवर्तन संभव नहीं है। और ये नियम है कि 31 सागर से ऊपर की जो आयु है वो सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होती है, तो उसके वो भव नहीं हो सकते। और फिर जो 31 से ऊपर की आयु में चला गया कोई भी जीव, तो विजयादिशत द्विचर्मा हो, वो द्विचर्म हो जाता है। द्विचर्म होने का मतलब ये हुआ कि वो दो बार वहां जा सकता है विजयादिक में, 5 अनुत्तर और 9 अनुदिश में वो दो बार जा सकता है, तीसरी बार कोई नहीं जा सकता, फिर मोक्ष ही जाना होता है। और दूसरी बार गया हुआ जीव नियम से मोक्ष चला जाता है। तो इस तरह 31 सागर तक देवगति का भाव भ्रमण लेना है, और 31 सागर की आयु तक जाने में आप विचार कीजिएगा कि 22 सागर से एक समय अधिक आयु की प्राप्ति मुनि पद के बिना नहीं होती। तो ये सोचने की बात है कि मान लो 22 सागर में एक समय अधिक आयु को कोई प्राप्त करते हैं कोई मुनि, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होंगे तो फिर सम्यक तो अगर बना रहा तो 7 या 8 जन्मों में मोक्ष हो जाता है। सम्यक दर्शन अगर नहीं छूटता तो 7 या 8 जन्म लगते हैं, ये सवेरे बताने योग्य विषय था, फिर भी अभी ये उपयोगी है। तो वो मिथ्या दृष्टि है। फिर कभी कालांतर में 22 सागर में 2 समय अधिक आयु में उत्पन्न हो जाए और उस इन दो के बीच में कई बार ग्रहवैक में घूमकर आ जाए ऊपर की आयुओं में, या 22 सागर की आयु में भी चले जा सकते हैं, नीचे में भी जा सकते हैं ऊपर भी जा सकते हैं, तो वो उसमें गिना नहीं जाएगा, पॉइंटर वहां से खिसकेगा नहीं, वहीं अटका रहेगा। फिर एक एक समय आयु बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और ऐसे 22 सागर से लेकर 31 सागर तक एक एक समय आयु बढ़ाते बढ़ाते कितने भव हो जाएंगे, कितनी मुनि दीक्षाएं हो जाएंगी, मिथ्यात्व के साथ कितनी बार मुनि पद होगा, ये विचार करके घबराहट होती है। कि वो जो बाह्य चर्या है साधु की, केवल इतना है कि सब कुछ मुनि का उनका चल रहा है, तभी तो वहां जा रहे हैं इतने ऊपर तक ग्रह, एक शुक्लेश्या के बिना जा नहीं सकते वहां पर, और शुक्लेश्या सुगम नहीं है, दुर्लभ है। इस पंचम काल में कुछ ऐसे कई ऐसे जीव हैं जिनने कभी शुक्लेश्या को छुआ ही नहीं है, ऐसे बहुत से जीव हैं। लेश्याओं का वर्णन अपन पढ़े तो फिर लगेगा कि ऐसे भाव तो मेरे कभी हुए ही नहीं है शुक्लेश्या जैसे, कई लोगों को लगेंगे। तो वहां जाने वाले, जब 12वें सर्ग से शुक्लेश्या शुरू होती है, वो 16वें स्वर्ग तक जाती है, फिर ऊपर ग्रहवैक में जाती है, और फिर परम शुक्लेश्वर एकदम ऊपर होती है सर्वार्थ सिद्धि आदि में अनुत्तरों में। और ये परिवर्तन अभव्य जीव भी करते हैं और भव्य जीव भी करते हैं। यहां पर ऐसा भेद नहीं किया है कि ये संसार जो होता है केवल अभव्यों का होता है, ये 5 प्रकार का संसार भव्य अभव्य दोनों जीवों का होता है। तो ऐसी कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि भव्य जीव इतना नहीं भटक सकता मुनि होकर के। अभी यहां भव्य और अभव्य का सवाल नहीं है, यहां मिथ्यात्व की बात चल रही है। जब तक मिथ्यात्व छूटा नहीं है तो भव्य और अभव्य में फर्क क्या है, वही कषाय है, वही मिथ्यात्व है, वही अतत्व श्रद्धान है, वही जिन शासन की अप्राप्ति है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अनंत बार ग्रहवैक की प्राप्ति हो जाती है जीवों को, एक भव परिवर्तन में कितने बार प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि 22 सागर से एक समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय, इस सीक्वेंस से उसको वहां तक पहुंचाने में कितने भव लगेंगे अपन कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो अपन 10,000 की आयु के बारे में सोच रहे थे कि उसमें कितने भव लगेंगे, तो ये तो 10,000 वर्ष थे, यहां तो सागरोपम की आयु की बात चल रही है, कोई उसकी सीमा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि केशलोंच करके जितने बाल तुम्हारे धरती पर पड़े हैं, या फिर जितने बाल तुमने विसर्जित किए हैं मिथ्यात्व के साथ, उनको यदि इकट्ठा किया जाए, कोई अगर उसका ढेर लगाए तो हवधि हो गिरी समधि आ राशि, वो पहाड़ से भी ऊंचा उसका ढेर लग जाएगा। इतनी बार तुमने केशलोंच किया है, तो मिथ्यात्व को छोड़ो और आगे बढ़ो। मिथ्यात्व को न छोड़ने के कारण ढेर तो आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी आत्मा जहां की तहां है वो आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए मिथ्यात्व से ऊपर उठो। मतलब नहीं, इतना नहीं कर सकते कभी नहीं। इसमें कैसे कर सकते हैं? अर्धपुद्गल परिवर्तन में अनंत भाव हो सकते हैं, लेकिन अनंत भाव में इस क्रम से उत्पत्ति होना तो मुश्किल काम है। पर इतना जरूर है कि अर्धपुद्गल परिवर्तन में असंख्यात बार सम्यक प्राप्त होकर के छूटता है, तो उतने असंख्यात बार वो सम्यक के साथ क्या क्या कर सकते हैं? जितना संभव है वो सब कर सकते हैं जितने गुणस्थानों में। बस इतना है कि सातवें गुणस्थान से ऊपर एक जीव मोक्ष जाने से पहले 5 बार जा सकता है। यानी श्रेणी पर आरोहण करने के लिए कोई मुनि तत्पर है, एक भव में 3 श्रेणियां तक हो सकती है अगर तद्भव मोक्षगामी है तो, अगर तद्भव मोक्षगामी नहीं है तो 2 श्रेणियां हो सकती है। जैसे आदिनाथ भगवान ने अपने पूर्व मुनि भव में, वज्रनाभि मुनि थे वो, तब उन्होंने अंत में 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण किया, उनके शरीर से लताएं लिपट गई, जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, आसपास चींटियों ने बामी बना लिया, सांप वगैरह ने, जैसे बाहुबली स्वामी थे वैसे ही हो गए थे वो। 6 महीने तक बैठे थे, अंत में उन्होंने 2 बार उपशमक श्रेणी पर आरोहण किया, और दूसरी बार उपशमक श्रेणी पर थे तभी उनकी आयु पूरी हुई 11वें गुणस्थान में और सर्वार्थ सिद्धि चले गए। तो एक जन्म में 2 बार हो सकते हैं, पर अगर विपुलमति मना पर एक ज्ञान होगा तो उपशमक श्रेणी नहीं होगी, ये एक और नियम है। और जिस जन्म में मोक्ष जाना है वहां अगर विपुलमति ज्ञान न हो तो 2 उपशम श्रेणी वहां भी संभव है, और फिर 1 क्षपक श्रेणी लास्ट में और मोक्ष। पर क्षपक श्रेणी के बाद तत्काल मोक्ष होने का नियम नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो। मान लो उपदेश के लिए भ्रमण कर रहे हैं तो फिर कुछ समय बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर उस भाव से मोक्ष निश्चित है। तो इस तरह ये 4ों गतियों में इतने असंख्यात असंख्यात, और पता नहीं अभी अपन आगे का नहीं कह सकते, इतने भाव धारण करने पर, क्रम से उतनी बार उत्पन्न होने पर, तावत भव परिवर्तनम, उसका नाम भव परिवर्तन है। उक्तम च कहा भी है, निर्यादि जहन्नादिसु जावदूवरेल्यादुगे विज्जा मिच्छत्त संसिधेणु बहुसु विभवट्ठिदि भमिदा। नरक आदिक आयुओं की जगन्य को आदि लेकर उपरिम ग्रेवेक तक की उत्कृष्ट आयु पर्यंत क्रम से एक एक समय आयु बढ़ाते हुए जब जीव भावों को धारण कर लेता है तो वो कैसे करता है? मिच्छत्त संसिधेण, मिथ्यात्व के आश्रित होने के कारण वो करता है। तो बहुसो भी, बहुत बार इसने भव स्थिति में भ्रमण किया है, एक भव परिवर्तन नहीं, बहुत सारे भव परिवर्तन किए हैं। ये सुनकर और भयंकर लगता है, एक भव परिवर्तन सुनकर के तो पसीना आ रहा था, अब यहां कह रहे हैं कि बहुत बार ये कर चुका है ऐसा। इसके बाद अंत में भाव परिवर्तन का विवरण आएगा। आज अपन ने क्षेत्र, काल और भाव परिवर्तन का विवरण पूर्ण किया। जैनम जयत शासनम।